आज बुधवार के ना,
बुधवार
बुधवार तारीख 23 नवंबर 2011, वृक्ष नंबर 1। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोए सवसाहूणं। जं जस्य जम्मि देशे जेन विहानेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्सतं निदेशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दो वा तः जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौ अपज्जाये सो सन्दिग्धि शुद्धो जो संकदिशो पूजिति। जिनागम के उपदेश के अनुसार हम कारण और कार्य का जो रहस्य है, मर्म है, वस्तु व्यवस्था है, उसको देख रहे थे। अभी हम कारण कार्य संबंधी जो अनेक शक्तियां हैं प्रत्येक द्रव्य में, उसकी चर्चा करते हुए हम यहाँ 124 पेज पर आ गए हैं। हिंदी गुजराती 123 है क्या?
123 का फर्स्ट पैराग्राफ।
हाँ, देखिए, कारण कार्य संबंधी चर्चा करते हुए अब हम कुछ चर्चा कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा के बारे में करते हैं। बाकी शक्तियाँ तो सभी द्रव्य में है, ये हमने जानी। अब जीव के संबंध में ये जो शब्द आते हैं बार बार शास्त्र में, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी बात हम देखेंगे। शास्त्र में इस तरह के अनेक शब्द पढ़ने में आते हैं, परंतु उन शब्दों का अर्थ न समझने के कारण उलझन होती है, अनेक प्रश्न मन में उठते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति दिखाई देते हैं जो बड़े उत्साह के साथ जिनागम का अभ्यास करने हेतु ग्रंथों का वाचन प्रारंभ करते हैं, परंतु उनका अर्थ और मर्म समझ नहीं पाने के कारण उनका उत्साह ठंडा पड़ता है और स्वाध्याय करना भी बंद हो जाता है। या हम क्या करते हैं, वो ऐसा ही होगा कुछ अर्थ करके आगे बढ़ते हैं, यानी वो तो सॉल्व नहीं होता है, होगा कुछ, चलो आगे चले, ऐसा भी लगता है। स्वाध्याय करके स्वयं का स्वरूप समझ लेने के बजाय पूजा दान उपवास यात्रा आदि क्रियाएं आसान लगने लगती है। ये डिफिकल्ट है कहते हैं ना लोग। अन्य पहचान वाले लोग भी वाह वाह करते हैं और यह जीव उसी में संतुष्ट होकर हम धर्म कर रहे हैं मानकर वृथा अभिमान और समाधान धारण कर लेते हैं। ये समाज में तो ऐसी बातें दिखाई देती है, ये तो डिफिकल्ट है, ये अपने को उपवास करो, ये कोई जो अन्य अन्य जो तप होते हैं, जो तप है ही नहीं एक्चुअल में, वो क्रियाएं कर हम तप कर रहे हैं, हम निर्जरा कर रहे हैं मानकर संतुष्ट होकर बैठ जाते। परंतु आत्मा का धर्म आत्मा में है और आत्मा को जानने से वह प्रकट होता है। इतनी सरल बात है। धर्म का अर्थ क्या मालूम है? धारयति इति धर्म, धारण करना, यानी आत्मा अपने गुणों को और पर्यायों को धारण करेगा। तो आत्मा का धर्म आत्मा में है कि बाहर है? जैसे अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। वो अग्नि में है, अग्नि के अपने कारण है। ऐसे आत्मा का धर्म क्या है? उस जो सारे अनंत गुणों का जो स्वरूप हम कहेंगे ज्ञायक भाव, उसका धर्म है। तो वो कब प्रकट होगा? पर्याय में। जो है स्वभाव वो अपने ही पर्याय में प्रकट होगा, तो उसमें है उसका लक्ष्य करेंगे तो पर्याय में प्रकट होगा। जिनागम का अभ्यास कुछ बहुत कठिन बात नहीं है। विशिष्ट पद्धति से क्रम क्रम से एक एक सिद्धांत सीखते जाएंगे तो कुछ कठिनाई नहीं लगती। अत्यंत रोचक है तथा बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरे उतरने वाले ये तत्व है। खरा उतरना है प्रूव हो जाना, साबित हो जाना। उसमें से न्याय, तर्कसंगत और युक्तिसंगत सिद्धांत, उनकी बारीकाइयां पढ़ते समय आनंद आता है और अधिकाधिक पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है। जितना पढ़ते जाएं वो तो समझ में तो आता ही है, रुचि भी बढ़ती है। आगे क्या लिखा है, ज्ञान तीक्ष्ण हो जाता है। तीक्ष्ण हो जाता है ना, तेज होता है, यानी वो बातें समझ में आती, बुद्धि बढ़ती है। ये तत्व पढ़ रहे हैं, तत्व पढ़ रहे हैं, तो ये पाप कर रहे हैं कि कुछ सही जो है वो जान रहे हैं, और ये जानने की रुचि भी है और उसके भाव भी है, तो दुनियादारी छोड़कर इसको रुचि में यानी इसको पढ़ने में अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो यहाँ शुभ भाव भी हो रहा है। और आत्मा को जानने की जिज्ञासा ये ऑर्डिनरी शुभ भाव नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ज्ञानावरणादि अनेक कर्मों का, सभी अशुभ जितने कर्म है उनका अनुभाग घटने लगता है। आवरण छिन्न होगा तो क्या होगा, ज्ञान खिलेगा। जो कहते हैं हमारी बातें ये समझ में नहीं आती, तो कहते पढ़ते जाओ तो जरूर समझ में आएगी। ये समय पढ़ना चाहता है और समझ में नहीं आती बात हो नहीं सकती है। ये सहज सहज कहे ना, सहज ऐसा सिद्धांत है। तो ज्ञान तीक्ष्ण होता है, बुद्धि की प्रगल्भता बढ़ती है, प्रगल्भता यानी उसकी डेप्थ, जानने की उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, और स्वयं के संबंध में इतनी सारी सहज सुंदर और सम्यक जानकारी से हम वंचित रह गए थे, इसका सफेद आश्चर्य लगने लगता है। ऐसे लगता है अरे ये बात मैंने अपने इतने 50-60 साल में कभी सुनी नहीं, ऐसी कभी सोची नहीं, और ये वस्तु स्वरूप इतना सरल सुंदर है, इतना स्वाधीन है, तो बहुत आनंद आता है। अभी हम ये कारण परमात्मा कार्य परमात्मा की बात करेंगे। देखो हाँ, हम कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा के संबंध में बोल रहे थे। तुम कहोगी परमात्मा के ये प्रकार हमें पता नहीं है। आपको पता है कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा? नहीं। आपके कौन से परमात्मा के नाम सुने हैं? परमात्मा के माल 24 भगवान, और कोई परमात्मा के भेद? सहयोग केवली, अयोग केवली, यानी अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। अरहंत परमात्मा को क्या कहते? सकल परमात्मा, कल यानी शरीर, शरीर सहित परमात्मा, वो कौन है? अरहंत परमात्मा। और सिद्ध परमात्मा कैसे? शरीर रहित परमात्मा, निकल निकल परमात्मा, सकल और निकल, ऐसे दो भेद हैं। देखो आगे लिखा है, तो बेटी कहती है कि हम तो सकल परमात्मा और निकल परमात्मा दो भेद जानते हैं, कल यानी शरीर, सकल यानी शरीर सहित अरिहंत परमात्मा सकल परमात्मा है, निकल नी यानी निकल गया है, कल कल का अर्थ शरीर, निकल यानी शरीर रहित सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा। ये तो सुन रखे थे परमात्मा के भेद, तो ये कारण परमात्मा कार्य परमात्मा क्या है? तो कहते ये जो तुम सोच रही हो उस प्रकार के ये भेद नहीं है, जरा ध्यान देकर पढ़ना। पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करना अर्थात अरिहंत और सिद्ध दशा कार्य परमात्मा है। क्या कहा? कार्य ने पर्याय, दशा अवस्था। पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट होना यानी जीव की अरिहंत दशा प्रकट हुई तो परमात्मा होने का कार्य हुआ।
आटा में से रोटी बनी तो रोटी हुई ना।
हाँ, अभी यहाँ हम परमात्मा की बात करें, अपनी अवस्था कौन सी है? परमात्मा। वो भले स्वभाव से परमात्मा था त्रिकाल, परंतु अभी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हुई तो उनको हम कहेंगे ये कार्य परमात्मा है, परमात्मा रूपी कार्य, उसको कहेंगे कार्य परमात्मा। यह दशा अवस्था पर्याय और कार्य बाह्य अन्य चीजों में से कर्म के क्षय में से या निमित्त में से प्रकट नहीं होते। ये जो कार्य परमात्मा नाम की जो दशा है, अरिहंत सिद्ध दशा है, किसमें से प्रकट हुई?
अपने
में से प्रकट हुई, अपने उपादान की योग्यता से, उपादानगत योग्यता में से प्रकट होती है। परमात्म दशा रूप जो पर्याय है, इसको क्या कहा? कार्य परमात्मा। कार्य है ना, ये पर्याय है ना, तो उसका कारण कौन है? तो कहते उसका उपादान कारण ही कारण परमात्मा है। स्वभाव त्रिकाली जो स्वभाव है, यानी द्रव्य स्वयं। क्या कहा? ये कार्य और कारण की हम चर्चा कर रहे हैं। कार्य परमात्मा, यानी परमात्मा रूप कार्य, परमात्मा रूप दशा, उसका कारण क्या है? तो उपादान, उसको क्या कहेंगे? कारण परमात्मा, यानी परमात्मा दशा का कारण, परमात्मा दशा रूप कार्य, वो कार्य परमात्मा। और ये परमात्मा दशा का जो कारण, वो कारण परमात्मा, जो उसका उपादान। पांच समवाय की भाषा में कहना हो तो स्वभाव नाम का समवाय कारण है, वह कारण परमात्मा है। जो त्रिकाली स्वभाव है उसको हम कारण परमात्मा कहेंगे। निमित्त उपादान की भाषा में कहना हो तो उपादान ही कारण परमात्मा है। प्रत्येक जीव का त्रिकाली स्वभाव यानी ज्ञायक भाव, उसी को क्या कहा? परम पारिणामिक भाव। देखो पारिणामिक भाव तो स्वभाव भाव है, परंतु अपना पारिणामिक भाव बताना है तो परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट। हाँ, तो मैं सबसे उत्कृष्ट महान हूँ। सबका अपना अपना पारिणामिक भाव है, तो मेरा अपना है जिसके लक्ष्य से हमें सम्यक प्राप्त होगा, जिसके लक्ष्य से केवल ज्ञान होगा, वो क्या है? परम पारिणामिक भाव। और क्या कहा उसको? निज ध्रुव शुद्धात्मा। समान है, यानी प्रत्येक जीव का अपना अपना है, और उसमें इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट, यानी इसका कुछ अलग है और इसका कुछ अलग है, ऐसा नहीं। दो अपने अपने भिन्न है, परंतु एक जैसे है सबके। क्या कहा?
एक जैसे
है। हाँ। अर्थात प्रत्येक जीव स्वभाव से कारण परमात्मा है, क्योंकि इसी में से, इसी के लक्ष्य करने से पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट होने वाली है। तो ये कारण परमात्मा, प्रत्येक जीव का जो त्रिकाली स्वभाव है वही उसका कारण परमात्मा है। कभी हम कारण को कहाँ ढूंढे?
अपने में।
और कहाँ ढूंढ रहे
हैं?
मैं भी स्वभाव से कारण परमात्मा हूँ, इतना सुनकर हर्षित मत हो जाना। क्या कहा? अभी एक रेड सिग्नल बताएं। क्योंकि कारण तभी कहा जाएगा जब कार्य होगा। कार्य हुआ ही नहीं और कारण हमारे पास है, हम कारण परमात्मा, हम कारण परमात्मा है, कारण परमात्मा है, कहने से वो नहीं होगा कुछ कार्य। कार्य बिना कारण किसका? जिसने परमात्मा दशा रूप कार्य प्रकट किया हो उसी के कारण परमात्मा कह सकेंगे। देखो हमारे घर में कोई, हमारे पूर्वजों ने कोई संपत्ति धन सोना गाड़ के रखा है घर में और हमें मालूम नहीं है, तो हम कहेंगे ना कि हम इतने करोड़ अब्जोपति है?
नहीं,
क्यों नहीं? पता ही नहीं है ना उसका, ये हम इतने धनवान है उसका पता ही नहीं है। और क्या कर रहा है? कोई होगा उसके घर में गाड़ दिया है धन और वो बाहर भीख मांग रहा है। वो तो करोड़पति रिक्शा वाला आपने सुना होगा। हाँ, ऐसा ही है कि जब तक उसे पता ही नहीं ना अपने धन संपत्ति का, वो है कि नहीं के बराबर है, तो हमारा कारण परमात्मा होकर भी क्या फायदा? नहीं के बराबर है। किसके है कहेंगे? जिसने कार्य प्रकट किया उसी को वो कारण है, ऐसा हम कहेंगे। हमारे आपके पास है जरूर, पर हम उसको नहीं कहेंगे। पहले हमने उपादान कारणों की चर्चा में देखा था कि तत्समय की पर्याय की योग्यता ही सच्चा कारण यानी निश्चय कारण है, और त्रिकाली उपादान तो उपचार कारण, व्यवहार कारण है। सच्चा कारण ही कार्य का नियामक है, यानी हमारे में तो ये पारिणामिक भाव भी है, कारण परमात्मा रूप त्रिकाली उपादान भी है, परंतु कार्य जिस समय हुआ उस समय कार्य कारण उसका विद्यमान है ना, योग्यता रूप कारण। तो जब कार्य होगा तो हम कहेंगे इसका कारण विद्यमान है। जिसने परमात्मा दशा प्रकट ही नहीं की उसके होने पर भी नहीं के बराबर है, ये बात बताना चाहते। हम अपने स्वभाव का आश्रय लेंगे और पर्याय में शुद्ध पर्याय प्रकट करेंगे समय दर्शन रूपी, तो हम कहेंगे यहाँ शुद्ध कारण भी है। पर्याय प्रकट होगी तब इसको हम शुद्ध कारण हम उपचार कब करेंगे, कार्य होगा तब कारण का उपचार करेंगे। वो था पहले से, स्वभाव तो पहले से था। कारण किसका कहा जाता है, कार्य का। अरे कार्य नहीं हुआ तो हम कारण किस पर आरोप करेंगे, समझ में आती बात। वो तो निमित्त की बात है, पर यहाँ उपादान भी है। पर उपादान है ये कब सिद्ध हुआ, सिद्ध कब हुआ उपादान है ये सिद्ध कब हुआ? हमें केवल शास्त्र में पढ़ने से सिद्ध होगा क्या? अपने पर्याय होगी तो यहाँ सिद्ध हुआ।
तो मुझे पूछना है कि जब वो परमात्मा दशा प्रकट करता है तब पर्याय उसके साथ ही है ना?
पर्याय कभी द्रव्य से भिन्न ही नहीं होती।
नहीं, वो उस समय की जब आप बोल रहे हैं ना कि
उसके पर्याय की योग्यता उस समय है ही, क्योंकि प्रत्येक पर्याय
से हुआ ऐसा नहीं बोलते ना।
पर्याय से कैसे होगा? देखो देखो कौन से पर्याय की बात कर रहे हैं आप?
परमात्मा दशा हुई,
ये परमात्मा दशा इस पर इस समय हुई, तो स्वभाव तो त्रिकाल पड़ा था, तो परमात्मा दशा इस समय हुए, कार्य हुआ, कार्य हुआ तो हम कहेंगे कारण इसमें विद्यमान था। पहले था परंतु हम कारण क्यों कहेंगे, कार्य हुआ ही नहीं तो कार्य कारण क्यों कहेंगे, ये कहने का मतलब अपेक्षावश उसको समझना। त्रिकाली स्वभाव तो है ही परंतु कार्य हुआ तब हमने इसको कारण कह दिया, उसने उसको स्वीकार ही नहीं किया है, अपना लक्ष्य ही नहीं किया है, तो वो होकर भी नहीं के बराबर है। कार्य हुआ तो क्यों हुआ ऐसा हम पूछेंगे, उसका कारण क्या है उसकी चर्चा करेंगे। देखो परम पारिणामिक भाव अर्थात त्रिकाली उपादान रूप कारण परमात्मा तो प्रत्येक जीव में है। हमारे आप में है कि नहीं स्वभाव, अपना पारिणामिक भाव है, परंतु कुछ ही जीव परमात्मा दशा को प्राप्त हुए हैं। अभी अर्यंत सिद्ध कितने हैं? अर्यंत लाखों में है अभी वर्तमान में, और अनंत तो सिद्ध हो चुके हैं। जिस जीव ने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि, दृष्टि का अर्थ क्या है, उसने स्वपना स्थापित किया अर्थात पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? अपने त्रिकाली स्वभाव में मैं यह हूँ, यह उसने अपने ज्ञान से निर्णय करके उसको जानते रहा, और परमात्मा दशा प्रकट की उसकी उस समय की पर्याय की योग्यता को यानी क्षणिक उपादान को सच्चा कारण परमात्मा। हमने भी उपादान में भी तीन भेद किए थे, त्रिकाली उपादान, एक सच्चा कारण क्या है, तो क्षणिक उपादान। उपादान के भेद याद है, त्रिकाली उपादान अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत् समय की पर्याय की योग्यता। अब यहाँ कारण परमात्मा तो हम कहेंगे त्रिकाल है, परंतु उसमें भी अगर सच्चा निर्णय करना है, जिस समय कार्य हुआ उस समय वो क्षणिक उपादान है ना, कौन सा, उस समय की पर्याय की योग्यता, उसको हम सच्चा कारण परमात्मा कह रहे
हैं।
हाँ वही सच्चा कारण, तो उस समय को क्षणिक उपादान को सच्चा कारण परमात्मा कहा और उस पर्याय को कार्य परमात्मा कहा। जिस समय कार्य हुआ उसी समय वो कारण विद्यमान है, कौन सा, उस समय के पर्याय की योग्यता। कोई अन्य परमात्मा तीर्थंकर या केवली अपने कार्य परमात्मा के कारण नहीं है, अपितु अपना कारण परमात्मा हम स्वयं ही है। यानी हमारा जो कोई कार्य होगा मोक्ष मार्ग का या मोक्ष का कार्य होगा, उसका कारण हम स्वयं है, हमारे में से वो पर्याय उत्पन्न होने वाली है। हम जब कहते वो मनुष्य को हम नहीं मानना, जब हम मनुष्य पर्याय की ओर देखते तो वहाँ कर्म का उदय भी है, शरीर भी है, वो सब बातें, उसको मैं अकेला मैं स्वयं जीव हूँ और मुझ में से ये पर्याय प्रकट होगी तो उसका कारण मैं स्वयं हूँ, इस तरह से लेना।
हाँ, अपने आखिर में जो लाइन पड़ी कि क्षणिक उपादान, वो तो पर्याय का उपादान हुआ ना, जो क्षणिक जो पर्याय जो तत्कालीन समय की पर्याय है, अभी तो हम उनको ही बोल रहे कि वहाँ जो उपादान है पर्याय में जिससे मुझे ये कार्य संपूर्ण हुआ, तो वही उपादान अभी कारण
कर्म वो पर्याय में नहीं है, क्षणिक उपादान द्रव्य में है, द्रव्य में उस समय उस पर्याय रूप होने की योग्यता पड़ी है। हम द्रव्य को अनादि अनंत काल कहते ना, वो द्रव्य का काल है। काल का अर्थ क्या है, जो योग्यता पड़ी है उसको हमने द्रव्य का काल कहा। द्रव्य में एक एक समय में एक एक पर्याय, इस समय में कौन सी योग्यता पड़ी है विशिष्ट पर्याय रूप होने की, अभी वो पर्याय स्वतंत्र है अपने से उत्पन्न होती, वो बात यहाँ मत लगाना। अभी तो हम द्रव्य पर्याय अभेद एक वस्तु है और द्रव्य स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, तो उसकी योग्यता कहाँ पड़ी है, द्रव्य में पड़ी है। ये द्रव्य में अनादि अनंत सभी योग्यताएं पड़ी है, किस समय कौन से पर्याय रूप होना, ये जो योग्यता है उसको हमने कहा क्षणिक उपादान। उस क्षणिक उपादान से उस समय वह कार्य होता है।
लेकिन उपादान जो हुई वो समय पर जो पर्याय हुई वो तो उनकी स्वतंत्रता से हुई ना,
हुई ना, उसको हमने कार्य परमात्मा का, पर वो कारण कहाँ है, द्रव्य में विद्यमान है, किस रूप से, योग्यता रूप से। अब यहाँ द्रव्य से पर्याय सर्वथा तो भिन्न नहीं है, कहीं जो अपेक्षावश पर्याय को स्वतंत्र बताया था वो अपने से अपने षटकार रखने से उत्पन्न होती, वो यहाँ पर लगा सकते हैं, परंतु हर बार वही एक ही सर्वथा बात नहीं है। हम यहाँ द्रव्य पर्याय को अभेद अखंड, वो तो वस्तु तरीके तो एक है, वो द्रव्य की ही वर्तमान अवस्था है, द्रव्य में से ही हुई है, क्योंकि उस रूप द्रव्य ही स्वयं परिणमित हुआ है, वो अलग से स्वतंत्रता से बिल्कुल किसी, बस द्रव्य है ही नहीं और उत्पन्न हुई, सोना है ही नहीं और बंगड़ी हुई, सोना है ही नहीं और हार हुआ, सोने में से बंगड़ी हुई, बंगड़ी में से हार नहीं हुआ, सोने में से हार हुआ है। हर पर्याय द्रव्य में से होती है।
यहाँ पर हमने उपादान कारण देखे थे, तीन उपादान कारण देखे, एक त्रिकाली उपादान, अभी दूसरे नंबर का जो है तत्समय की योग्यता,
अनंत पूर्वक
क्षणवर्ती पर्याय, उसकी भी बात नहीं आ रही, तीसरे के लिए
तत्समय की
योग्यता, वो सच्चा
समय की योग्यता जो है वो पर्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन द्रव्य में भी उपादान है ना, उसी समय होने की, हार रूप होने की, क्या अभी यहाँ केवल ज्ञान होने की योग्यता द्रव्य में, वो जो कारण त्रिकाली उपादान कारण, उसमें से जो थर्ड नंबर का जो कारण है वो द्रव्य में ही है, वो कारण है और यहाँ पर्याय हुई वह कार्य है।
मैं ऐसे समझता हूँ, यदि गलत तो मुझे करेक्ट करना, कि अब ये कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा हम भूल जाए एक मिनट के लिए, तो खाली उपादान लेवे और तत्समय की पर्याय लेवे, तो जो त्रिकाली ध्रुव है उसमें से हर समय अपनी अपनी पर्याय तो निकलती रहती है, तो जो पर्याय निकलती है वो अपने द्रव्य से ही निकलती है, वो बात मैं ऐसी समझता हूँ, और अपनी योग्यता से ही निकलती है, उसमें मैं जो मैं समझाऊँ उसमें कोई गलत है कि करेक्ट, और कुछ
बिल्कुल बराबर है।
अपनी योग्यता कहाँ पड़ी है, द्रव्य में पड़ी,
द्रव्य में पड़ी, बस मुझे अभी ज्यादा
उस समय के पर्याय की योग्यता, ये द्रव्य का स्वभाव,
मैं जितना समझाओ
नहीं, और डाल ले अच्छा है, पक्का हो जाएगा,
बताओ बोलो।
आपने अभी तक
वो मैं सुन रहा हूँ, तो मैंने इतने पक्का है कि जो होने वाला एक पर्याय जो होने वाली है वो तो अपने द्रव्य की हिसाब से निकलने वाली है, उसमें मैं कुछ करता, मैं उसमें कुछ कर सकता नहीं हूँ, तो अपना त्रिकाली ध्रुव का ही हम पकड़ ले हुए, तो होने वाला तो होने वाला
है। यानी जो क्षणिक उपादान है किसी भी पर्याय का, तो जिस समय पर्याय होती है उस समय द्रव्य में वो योग्यता पड़ी है, कब से पड़ी थी, तो अनादिकाल से वहीं पर थी, कि उस समय उस पर्याय रूप होने की योग्यता, तो द्रव्य उस समय उस योग्यता के कारण उस पर्टिकुलर पर्याय रूप से परिणमित हुआ है। ये पर्टिकुलर पर्याय को कार्य कहा और उस समय के वो क्षणिक उपादान को कारण कहा। वैसे त्रिकाली कारण भी उसे पूरे द्रव्य को कहते हैं और क्षणिक उपादान उस समय की योग्यता को कहते हैं। अब ये हमने एट रैंडम ऐसे केवल उसको पर्याय कहा और इसको उपादान कहा। हम उस पर्याय को नाम देंगे, कौन सा है? परमात्मा दशा। परमात्मा दशा तो दशा है कार्य, परमात्मा रूप कार्य, तो ये कार्य शब्द हमने पहले लिया। कार्य परमात्मा, कार्य परमात्मा अर्थ क्या हुआ? परमात्मा रूप कार्य हुआ पर्याय में। उसका कारण क्या है? त्रिकाली उपादान तो हम उस द्रव्य को कहेंगे, कौन है वो? जीव द्रव्य है, उसमें से परमात्मा दशा प्रकट होगी। कब होगी? तो वो क्षणिक उपादान को देखेंगे, तो ये त्रिकाली को भी हम कारण परमात्मा कहेंगे त्रिकाली उपादान की अपेक्षा। और उस समय उस परमात्मा दशा रूप होने का योग्यता उस समय में पड़ी हुई है, उसको हम क्षणिक उस समय की हमने कहा सच्चा कारण परमात्मा। यानी कारण परमात्मा यहाँ त्रिकाली को भी कहेंगे और उसी समय क्यों हुआ तो उस समय की योग्यता है उसको भी हम कारण परमात्मा कहेंगे। दोनों अपेक्षा ख्याल में है ना? अपेक्षा से भी कोई भी बात लेना है सर्वथा हम
त्रिकाली उपादान क्यों समझना है कि वो कार्य उसी द्रव्य में होगा, जैसा हमने देखा कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कोई पुद्गल में नहीं होगा, धर्म में नहीं होगा, अधर्म किसी द्रव्य में नहीं होगा। तो त्रिकाली उपादान यानी जैसा हमने देखा माटी किससे, अपना घड़ा किससे बनता है? तो माटी से बनता है। तो माटी तो यहाँ कब से पड़ी है, अभी क्यों नहीं बना है घड़ा? वो तो त्रिकाली उपादान यानी वो तो घड़ा बने तो मिट्टी से ही बनेगा, सम्यक दर्शन होगा तो जीव में ही होगा, उसकी मतलब वो त्रिकाली कारण है उधर, जिसको हमने स्वभाव गिना है। अब आगे कहते हैं कि वो कार्य कब हुआ कि जब उसकी त्रिकाली उपादान शक्ति जो थी उसमें से तत्समय की योग्यता रूप जो उपादान कारण है वो बाहर आ, कब उसको कहेंगे कि जब यहाँ कार्य हुआ? कार्य कौन सा हुआ? तो परमात्मा बने, तो उसको कार्य परमात्मा पर्याय को कहा और उसी समय वहाँ जो तत्समय की योग्यता रूप जो हमने जो क्षणिक उपादान जो देखा था उसको वहाँ सच्चा कारण कहा, क्योंकि अनादि से शक्ति थी, अभी तक नहीं हुआ ना, अभी हुआ केवल ज्ञान या परमात्मा रूप अवस्था, तो वो उस समय की जो आपने जो देखा कि तत् समय की योग्यता रूप एक क्षणिक उपादान वो सच्चा कारण है, ऐसा भी पता है।
मेरा प्रॉब्लम ये है कार्य पर्याय में,
बिल्कुल
बराबर,
हमेशा कार्य पर्याय में होगा
और
पर्याय में नहीं, कार्य इटसेल्फ पर्याय है, कार्य पर्याय में हुआ ऐसा मत कहो, कार्य ही पर्याय है, पर्याय ही कार्य है। किसका कार्य है? तो हम कहेंगे द्रव्य का कार्य है, द्रव्य की अवस्था है।
तो मैंने सोचा कि कार्य पर्याय में हुआ, जो अवस्था भी बोले कि जो भी वो पर्याय हम बोले तो वो स्वतंत्र है, तो उपादान भी उनका ही लगना चाहिए नाम। और अभी कार्य पर्याय में हम बोल रहे हैं कि जस देते हैं द्रव्य, क्योंकि हमने बोला क्षणिक उपादान तो द्रव्य का, कार्य का ये पर्याय का ही नहीं।
द्रव्य बिना हुई क्या पर्याय?
नहीं, लेकिन जब हम स्वतंत्र पर्याय को बोलता है तो स्वतंत्र है ना,
स्वतंत्र इसलिए कहते हैं इस समय कौन सी पर्याय हुई, इस समय कौन सी पर्याय हुई, इस समय कौन सी पर्याय हुई, वही हुई, पर हुई तो कहाँ से हुई? द्रव्य से हुई, वो द्रव्य की अवस्था है, द्रव्य से स्वतंत्र बंगड़ी हुई, बंगड़ी अपने में से हुई, अपने में से तो सोने में से हुई है, अगर सोने को उड़ा देंगे तो वो असत की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। सर्वथा पर्याय को हम उसको, इसलिए मैंने बताया अपेक्षा अवश्य बातें सुननी है, सर्वथा लगाएंगे तो भ्रमणा ही होती है, एकांतवाद शुरू हो जाता है कि पर्याय सर्वथा स्वतंत्र है, उसको किसी की अपेक्षा ही नहीं। सर्वथा अगर मानेंगे तो द्रव्य की अवस्था को तो हमने पर्याय नाम दिया, द्रव्य है ही नहीं तो पर्याय आई कहाँ से? ख्याल में आती है, पर पर्याय वहाँ पर आई है, परंतु वो पर्याय वही पर्याय क्यों हुई, तब हम उसकी स्वतंत्रता की बात उठाएंगे।
द्रव्य पोते परिणमन करे,
यह परिणम है करता, और जो परिणमन है वो उसका कार्य है। ये समय सार आत्मख्याति में लिखा है अमृत चंद्राचार्य। जो परिणमन करता है वो द्रव्य है, वो करता है। जो परिणमन हुआ वो उसका कार्य है या क्रिया है, यानी वो दो भिन्न एंटिटी है ही नहीं है। द्रव्य उस रूप से ही विद्यमान है, कभी भी पर्याय को द्रव्य से भिन्न कर ही नहीं सकते हैं। अपेक्षावश ये क्यों? क्योंकि हम वो पर्याय की स्वतंत्रता बताने के लिए बात उठाई है।
एक और छोटा सा उदाहरण, ये अभी जो क्वेश्चन समझने के लिए मैं जो जिस तरह समझाऊं, दूध और रॉ मटेरियल है, उसमें से दही बना, तो दूध की ताकत से वो दही बना, वो इनकी वर्तमान पर्याय है, और दही में से छाछ बनी, वो भी तो भी स्वीकारी ध्रुव तो दूध ही है। उसके बाद छाछ में से उसमें से मक्खन निकाला, मक्खन से घी बना, तो घी को पीछे तो दूध ही रो मटेरियल ही है, वही अपना त्रिकाली ध्रुव होगा।
त्रिकाली ध्रुव होगा लेकिन तब समय की योग्यता,
योग्यता की ये दशा बदलती रहती है, क्योंकि वो कभी वो जो था वो उसकी जो अनंत जो गुण है वो कभी भी नहीं बदले।
देखो ये उदाहरण को अच्छी तरह से कहने के लिए हम दूध में से छाछ और छाछ में से बटर नहीं कह सकेंगे,
तो
उसको गोरस कहना। गोरस
गोरस क्या?
गोरस वो जो दूध दूध ही उसकी अवस्था कहेंगे।
ओ अच्छा, दूध के बदले गोरस,
गोरस
जो उसमें गुण
नहीं, नहीं, नहीं गोरस बस उसको नाम दे दो गोरस, तो गोरस में से वो दूध ही उसकी अवस्था ही है। अब ये गोरस दही है अवस्था है, फिर उस वो तो वो दही में से छाछ बना ऐसा नहीं कहेंगे। गोरस किस रूप में विद्यमान है? दही रूप में। अब वो क्या हुआ? वो गोरस किस रूप से हुआ? छाछ रूप से हुआ, वो माखन रूप से हुआ, घी रूप से हुआ, अभी उसको कह दे।
तो
ये सारा गोरस है,
सारा गोरस है।
क्योंकि घी हुआ है तब हम उसको दूध नाम नहीं दे सकते, पर उसको गोरस कह सकते।
अच्छा।
वो गोरस की वो अवस्था हुई, शास्त्र में गोरस शब्द आता है उसके।
गोरस का अर्थ
क्या? यही दूध ही है वैसे,
गुण
गुण नहीं उसको, गोरस ये वर्धा आदि उधर गोरस कहते हैं, वो सब गोरस पाक वगैरह उनके वो संबंध है। दूध के लिए गोरस शब्द आता है,
वो कॉमन है।
हाँ वो कॉमन है,
जैसे आपने दूध को कॉमन गिना है
तो ये गोरस,
उसके वजह गोरस कह दो। तो वही उदाहरण,
उदाहरण से क्या रखता है, थोड़ा ठीक हो जाता है।
देखो कारण कार्य व्यवस्था की यह सारी चर्चा करने का प्रयोजन ही यह है कि यह जीव अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में अपने कार्य का कारण अन्य द्रव्यों में ढूंढता आया है, पर के कारण मेरा कार्य होगा ऐसा ही मानते आया है। मैं किस गुरु के पास जाऊँ तो मेरा कार्य होगा, शास्त्र में से निमित्त कथन पढ़कर योग्य अर्थ करने के बदले उसने निमित्ताधीन एकांत दृष्टि पुष्ट की। एकांत कहा, निमित्त होते हैं, उसकी उपस्थिति होती है, परंतु सर्वथा, सर्वथा शब्द रखा ना, एकांत कहते हैं उसको, बस अन्य कुछ नहीं कंसीडर करना, बस वही एक को मुख्य नहीं किया उसने, सर्वथा उससे ही कार्य होगा ये माना है। उसको कहते एकांत दृष्टि, यानी एकांत मान्यता पुष्ट की है, यानी उसी को और उसने कन्फर्म कर दिया। इस कारण उसका उपयोग कभी स्व सन्मुख हुआ ही नहीं, क्योंकि उपयोग को तो ज्ञान में तो ऐसा नहीं कि किसी के कारण मेरा होगा, किसी के कारण मेरा होगा, तो पर की महत्ता आती रही उसके। सदा सर्वदा यानी हमेशा के लिए पर सन्मुख दृष्टि और पर की महिमा के कारण यह ज्ञायक स्वयं के संबंध में अनभिज्ञ ही रह गया, अनारी ही रह गया। कौन है मैं? स्वयं ज्ञायक, जानने वाला तत्व तो मैं ही हूँ, परंतु क्या माना, पर की महिमा आती रही उसको, और पर से ही कार्य होगा ये मान्यता रही, उल्टी मान्यता। तो जानने वाला मैं स्वयं होकर भी अपने से अनजान रह गया, अपने को ही नहीं जाना, सब दुनिया को जानते रहा, दुनिया का निर्णय करते रहा, जाना किसको नहीं, जानने वाले ने अपने को नहीं जाना। ये दुख की बात है कि सुख की बात है?
दुख की बात
पूरे विश्व को जानने वाला अपने को ही नहीं जान रहा है। वो तो बच्चों को स्टोरी बताते ना, 10 बच्चे उतरे समुद्र में, गए थे तैरने को, तो किनारे आ गए, चलो अभी घर जाना है तो नाप लेंगे, तो गिना 1 2 3 4 9 ही बच्चे। अरे बाप रे, कौन खो गया? दूसरे, तेरे को गिनने को नहीं आता, मैं गिनता हूँ। उसने गिना 1 2 3 4 9 बच्चे, सब ने गिना एक के बाद, तो 9 ही बच्चे। तो हाँ, पोता ऐसा ही हमारा हुआ है। क्या हुआ? अपने को ही नहीं जाना, बाकी सबको जानता रहा। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा के समान शास्त्र में कारण समय सार और कार्य समय सार शब्द भी आते हैं। समय शब्द के अनेक अर्थ है। समय काल को कहते हैं, व्यवहार काल का यह नाप है। आपने देखा ना, एक समय में इतना इतना जानते भगवान। शास्त्र को भी समय कहते हैं। जब हम कहेंगे ना जैन मत, यानी अपना स्व मत, और एक होता है परमत, अन्य मति को परमत कहते हैं, तो कहीं कहीं स्व मत के लिए, जैन मत के लिए स्व समय शब्द आया है, और अन्य मतियों के शास्त्रों के लिए पर समय शब्द आया है। समय सार में तो स्व समय और पर समय किसको कहा? अपने शुद्धात्मा में जो अनुभव करेंगे उसको स्व समय कहा, और पर समय यानी अपना ज्ञान बाहर भटकता है उसको पर समय कहा। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कि हमें किस अर्थ में कहा जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे कहाँ समझते। श्रीमद जी कहिए ना, क्योंकि समय अर्थात द्रव्य, यानी द्रव्य को भी समय कहते हैं। तो भी समय सार किसको कहेंगे? छहो द्रव्य में सार रूप मैं, यानी जीव द्रव्य हूँ, तो उसको समय सार कहेंगे। तो छहो द्रव्यों को समय कहते हैं, और सब द्रव्यों में सारभूत निज द्रव्य, सॉरी जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य में भी निज द्रव्य, मैं स्वयं समय सार हूँ। जीव द्रव्य में निज शुद्धात्मा को समय सार कहा। देखो, हम अपने पहले तो सभी द्रव्यों को समय कहा था, उसमें सार रूप जीव द्रव्य है, अब सभी जीव द्रव्य समय कहेंगे, तो सार तो मैं हूँ, तो समय सार मैं हो गया। अभी मैं यानी जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य, उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ है, तो उसमें भी मैं स्वयं समय हूँ, तो सार कौन हो गया? त्रिकाली शुद्धात्मा। तो हम अपने एकदम नजदीक आ गए ना, त्रिकाली जो ध्रुव रूप है उसको समय सार कहा। इसी को स्वशुद्धात्मा कहेंगे। स्वशुद्धात्मा की दृष्टि, दृष्टि का अर्थ क्या देखा था? यह मैं हूँ ऐसी मान्यता, ज्ञान और रमणता, रमणता यानी वो चारित्र को स्व समय अर्थात कार्य समय सार कहते हैं। अपनी दृष्टि की यानी समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र किया। ये क्या किया उसने? पर्याय में जैसा हूँ वैसा पर्याय प्रकट हुई, तो उसको क्या कहेंगे? कार्य समय सार। समय सार कौन है? शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा का लक्ष्य करने से पर्याय में जो स्वभाव रूप पर्याय प्रकट हो गई, कौन सी? समय दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको पर्याय वाला समय सार कहा। तो पर्याय वाला समय सार यानी कार्य समय सार। जो बातें पर्याय में होती उसके पीछे कार्य लगाते, तो कार्य समय सार। और स्व शुद्धात्मा किसके लक्ष्य से हुआ? उसका कारण कौन है? मैं स्वयं त्रिकाली शुद्धात्मा। स्व शुद्धात्मा को कारण समय सार कहते हैं। अभी यहाँ क्षणिक उपादान की चर्चा नहीं की, समझाने के लिए कार्य और त्रिकाली शुद्धात्मा ऐसा ही ले लिया। मैं कारण समय सार, और पर्याय में जो समय दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ वो कार्य समय सार। इससे एक बात ख्याल में आती है कि प्रत्येक द्रव्य के कार्य का कारण उस द्रव्य में ही विद्यमान है। ये तो डेफिनेट है ना, ये तो हम यहाँ तो जीव द्रव्य पर घटित कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य में उसकी प्रत्येक पर्याय का कारण उस द्रव्य में ही विद्यमान है। किसी को भी स्वयं के कार्य के लिए पराधीन होकर पर की तरफ आशा भरी निगाहों से ताकने की जरूरत नहीं है। अब नियम सार की बात यहाँ स्वयं के कार्य के लिए, अपनी कोई पर्याय प्रकट करने के लिए पराधीन होकर पर की तरफ, यानी कोई दूसरा द्रव्य, कोई देव, कोई शास्त्र, कोई गुरु, उनकी तरफ आशा भरी निगाह, आशा यानी कोई मेरा कार्य करे, अरे कोई तो मेरा कार्य कर देगा, अरे रे मेरा कार्य नहीं हुआ, अरे कर्म तो मेरा हट जाएगा तो मेरा कार्य होगा, तो आशा से किसी अन्य की ओर ताकने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य सेल्फ सफिशियंट है ना?
दूसरे के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं।
नियमसार ग्रंथ में कारण नियमसार और कार्य नियमसार की चर्चा की हुई। अब ये समयसार का तो अर्थ देखा हमने, शुद्धात्मा और शुद्ध पर्याय। अब नियमसार में कैसा लगाना उसको देखेंगे। नियमसार कुनकुंदाचार्य ने लिखा हुआ परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, इस बात का तुम्हें पता होगा ही, क्योंकि बच्चे हैं ना। अभी समयसार का तो नाम सुना है, नियमसार कुनकुंदाचार्य का ही ग्रंथ है, इसलिए उसका नाम लिख दिया। इस ग्रंथ पर मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव ने, ये पद्म प्रभ मलधारी नाम के आचार्य हुए थे,
इसने टीका लिखी,
उन्होंने टीका लिखी, बहुत गजब की टीका है। उन्होंने विश्लेषणात्मक यानी उसको समझाने के लिए उसको विस्तार से समझाया है, भाष्य ने टीका लिखी हुई है, उसको टीका कहते हैं, समयसार की टीका। टीका का अर्थ क्या है? विस्तार से उसका विवेचन। अभी नियम किसको कहना, क्योंकि नियम और उसका सार, तो नियम सार का अर्थ क्या है? जो नियम रूप से करने योग्य है वह नियम है। तो क्या करने योग्य है? फिर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यही नियम है। उसके पीछे सम्यक शब्द लगाना, सम्यक अर्थ करने तथा विपरीतता का खंडन करने हेतु सार कहने में आता है। ये नियम यानी क्या? नियम से करने योग्य जो कार्य है उसको नियम कहेंगे, और वो सम्यक क्या कार्य करना है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र का कार्य तो अनादि से चल रहा है, तो कैसा चाहिए हमें? सम्यक। तो सम्यक शब्द लगाने के लिए सार कह दिया। तो नियम सार, यानी सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, जो करने योग्य कार्य है, ऐसा उसका अर्थ हुआ। यानी उसी को दूसरे शब्द में कहेंगे तो रत्नत्रय। रत्नत्रय यानी सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यह नियम हुआ। तो व्यवहार रत्नत्रय अर्थात राग भाव रत्नत्रय नहीं है, परंतु क्या कहा अभी परमात्मा प्रकाश में? यही बात आ रही है। कल आपने वो आचार की बात देखी होगी, निश्चय आचार पंचाचार और व्यवहार पंचाचार। यह हम निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय कह रहे हैं। तो कौन सा नियम से करने लायक है? निश्चय। व्यवहार का अर्थ क्या है? उनके जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति है, मुनिराज हो गए तो 28 मूल पालन करने के भाव है, वो क्या है? सारे वितरागता के साथ रहने वाले शुभ भाव है शुभ भाव, उसको भी उपचार से रत्नत्रय कह दिया। कल बात आई ना, ये पंचाचार व्यवहार पंचाचार बहुत व्यवस्थित डिटेल में बताया था, ज्ञान के, दर्शन के, चारित्र के, बाह्य में व्यवहार आचार क्या होते, उसकी बात देखी थी। तो यहाँ यही कहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय को क्या कहा? राग भाव रत्नत्रय नहीं है, परंतु उसका सहचर होने से, किसका? रत्नत्रय का सहचर होने से। इसका अर्थ क्या है? जहाँ निश्चय, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, वो तो वितरागता है, उसके साथ अभी राग कुछ बाकी है ना, चौथे गुणस्थान वाले का 3 कषाय चोकरी बाकी है, पांचवे गुणस्थान वाले के 2 कषाय चोकरी बाकी है, मुनिराजों के 1 संजोलन कषाय बाकी है। तो जितना बाकी है उसका कार्य क्या चल रहा है? तो कुछ शुभ भाव चल रहे हैं, उस शुभ भाव को हम उपचार से कह देते हैं। जैसे अभी हम तो जीव है, और ये शरीर जीव है कि अजीव है, कि जड़ है कि चेतन है? अजीव है। फिर भी हम इसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। ये केंद्रीय जीव है, ये द्विंद्रीय जीव है, ये पंचेंद्रीय जीव है। जीव तो कह रहे हैं किसको? वो शरीर सहित वाले को, यानी वहाँ शरीर को भी शामिल करके उसको जीव कह दिया। शरीर जीव है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, वो तो अजीव है। फिर भी उसको जीव कहेंगे या सजीव कहेंगे? ये जैसा उपचार हो रहा है वैसे ही यहाँ पर जो शुभ भाव है किसके साथ वाला, वितरकता के साथ वाला जो शुभ भाव है उसको उपचार से रत्नत्रय कह देते हैं। कैसा रत्नत्रय? व्यवहार रत्नत्रय। ये उपचार कब होगा? निश्चय साथ में होगा तब। तो पहले भी कर रहा था ना, देवशास्त्र गुरु की भक्ति पहले भी कर रहा था। जो मुनि होते तो पहले विधि पूर्वक दीक्षा लेते हैं तो वो सारा आचार पाल रहे थे, उनके शुभ भाव भी हो रहा था। हाँ, परंतु तब तक उसको व्यवहार नाम नहीं दिया जाता। जो बाह्य में आचरण कर रहे हैं उसमें कोई रत्ति मात्र भी चेंज नहीं हुआ है, परंतु पहले वहाँ वितरकता नहीं थी, वो खोखा था केवल। अब उसके साथ वितरकता आ गई तो उसको व्यवहार नाम देंगे, उसके पहले नहीं। यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई तो उसको क्या कहेंगे हम? भीड़ कहेंगे। उसके साथ वो वर होगा तो भारत कहेंगे। तब तक तो भारत नहीं कही थी नहीं ना। तो ऐसा ही जब तक निश्चय नहीं है तब उस पूरे आचरण को व्यवहार नाम नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो आचरण शुरू से है पर तब तक हम उसको केवल सदाचार कह सकते हैं, केवल शुभ भाव कह सकते हैं। वो शुभ भाव शुरू से हो गए और जब उसके शुभ भाव का लक्ष्य छोड़कर साथ में वितरकता उत्पन्न हुई, वो शुभ राग तो पूरे मिटे नहीं है, वो तो है भी, अभी भी है, तो उसका नाम क्या होगा? अभी व्यवहार। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है वो पहले से देव शास्त्र गुरु की, सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, पूजन कर रहा है, सात तत्वों का अभ्यास कर रहा है, ये सब है उसका। परंतु इनको व्यवहार नाम कब होगा? जब उसके सम्य दर्शन होगा तब। भाई ख्याल में आती है नहीं बात? इसीलिए पहले कोई लोग क्या कहते, पहले व्यवहार होता है बाद में निश्चय होता है। परंतु वो पहले वो जो आचरण था उसको हम व्यवहार नाम नहीं दे सकते जब तक निश्चय प्रकट नहीं हुआ है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। फिर वो झगड़ा मिट जाएगा क्योंकि वो आचरण पहले था ना। हाँ था, उसी को किसी ने व्यवहार बता दिया, पर हमें तो सिद्धांत के अनुसार चलना है। द्रव्य संग्रह में भी गाथा है कि द्वियोपि मोक्ष मार्गम जाने पाउनदि मुनि नियमा। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग कौन सा? निश्चल व्यवहार मुनिराज को ध्यान अवस्था में प्राप्त होता है। निश्चय कब प्रकट हुआ? ध्यान में। निश्चय भावलिंग यानी सातवां गुणस्थान कब प्रकट हुआ? जब अंतर ध्यान की अवस्था में। और तभी जितना संज्वलन राग बाकी है उसको नाम क्या मिला? व्यवहार। इसलिए निश्चय व्यवहार एक साथ प्रकट हुए ऐसा कहा। ये तो मुनिराज की बात है। चौथे गुणस्थान में भी ऐसा ही है। देव शास्त्र की भक्ति और उनका ये तत्व ज्ञान के अभ्यास बिना तो समय दर्शन हुआ नहीं है, तो पहले से कर रहा था परंतु उसको व्यवहार नाम कब मिला? जब समय दर्शन प्रकट होगा उसी समय। उस समय तो स्वाध्याय नहीं कर रहा था। हाँ, परंतु वो ज्ञान की पर्याय है, सब चल रही थी उसकी, शुभ भाव भी चल रहे थे उसके। उसको गौण करके उसका लक्ष्य छोड़कर आत्मा को लक्ष्य में लिया है, परंतु राग रहित तो नहीं हुआ है उस समय भी। अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं हुए परंतु अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन चल रहे है वहाँ पर भी। अब उस राग भाव से वहाँ जो शुभ भाव चलेंगे अभी अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या है? उस जीव के वो उसका लक्ष्य नहीं है, वो उसके ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान कहाँ लगाया है? शुद्धात्मा में। तब उस राग भाव को क्या कहेंगे? व्यवहार कहेंगे। तभी हम यहाँ आते हैं। तो सार शब्द क्यों लिखा? क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय की बात नहीं करनी है, निश्चय रत्नत्रय की बात करनी है। इसलिए करने योग्य जो है वो नियम सार बता दिया। तो नियम सार कहने से निश्चय रत्नत्रय का वो सूचक शब्द तैयार हुआ। ये मुख्यतः से मुनिराजों की बात है। नियम सार ग्रंथ कुनकुंदाचार्य ने अपने लिए लिखा है, सब कहते हैं। शुद्ध रत्नत्रय रूप नियम मोक्ष मार्ग है, वह कार्य रूप है, यही कार्य नियम सार है। क्या कहते हैं? ये जो शुद्ध निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुआ है, कार्य हुआ ना, वो मोक्ष मार्ग है। निश्चय रत्नत्रय, निश्चय मोक्ष मार्ग, वो कार्य है क्या? उपादान, यानी वो उपादान है, कार्य, उसको क्या कहेंगे? कार्य नियमसार। नियमसार किसको कहा? निश्चय रत्नत्रय को नियमसार कहा। वो पर्याय में प्रकट हुआ, उसको क्या कहेंगे? कार्य नियमसार। इतनी बात ख्याल में? उसका कारण कौन है बताते हैं। तो कारण उसे ही कहते हैं कि जिसके आश्रय से कार्य प्रकट होता है। जिस तरह कार्य वर्तमान में है, उस तरह उसका कारण भी वर्तमान में ही होता है। क्योंकि क्षणिक उपादान कब है? वर्तमान में। हम क्षणिक उपादान की बात कर रहे हैं। कार्य जीव द्रव्य में है तो उसका कारण भी जीव द्रव्य में है। शरीर में, शरीर की क्रियाओं में, बाह्य व्रत उपवास आदि में नहीं है। क्या कहा? ये निश्चय रत्नत्रय मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, वो किसकी पर्याय है? जीव की। तो कार्य कहाँ हो रहा है? जीव में। तो कारण कहाँ होगा? तो जीव में। और हमने क्या माना कारण कहाँ होगा? ये शरीर के उपवास करेंगे, शरीर के ऐसी अवस्था करेंगे तो हमें वो कार्य प्रकट होगा माना। ये क्या मान्यता की भूल है। इन क्रियाओं का, शुभ भाव का निषेध नहीं है, परंतु शुभ भाव से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, ये मान्यता का निषेध है। लोग क्या समझते हैं? ये शुभ भाव का निषेध कर रहे तो कहते क्या ये छोड़ दे। अरे छोड़ने की कहाँ बात है। जैसे हमने बताया कि ये रोटी आप नहीं बना सकते हैं, तो हम कल से नहीं बनाएंगे, उसके लिए बताया था क्या? निर्णय करने के बताया था। शुभ भाव तो होते, निराश के भी हो रहे, परंतु कार्य कहाँ हुआ है? जीव में। तो उसका कारण क्या है? वो भी जीव में पड़ा है, उस कारण से वो कार्य प्रकट हुआ है। वो शरीर में जो क्रियाएं हुई उसके कारण कार्य नहीं हुआ। उसके कारण कार्य होता तो जो जो मुनि दीक्षा लेते हैं सबको वो भावलिंगी सातवां गुणस्थान प्रकट होना चाहिए था, वो तो नहीं होता है। हमने देखा ना कि मिथ्या तो अवस्था में अनंत बार ऐसी मुनि दीक्षा ली, फिर भी कार्य क्यों नहीं हुआ? उसका अर्थ है मान्यता में कहीं खोट रह गई। भाई एक दो बार नहीं, अनंतो बार। केवल अनंत बार मनुष्य हुआ ऐसा नहीं, अनंत बार उसने द्रव्यलिंग धारण किया। द्रव्यलिंग का अर्थ बहुत समझते है, सच्चा बाह्य आचार, जैसा ग्रंथों में कहा है ऐसा ही बाह्य में आचार उसने धारण किया, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, मान्यता में खोट रह गई। क्या माना? कि यही इसी अवस्था के कारण, इसी शरीर की क्रिया के कारण मुझे मोक्ष होगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा, और ये मेरी क्रिया है, मैं कर रहा हूँ। इस तरह से वो उसमें राग में और शरीर की क्रिया में एकत्व पड़ा है।
व्यवहार संदेह दर्शन मान लेता है,
ये तो है ही नहीं ना व्यवहार संदेह दर्शन। निश्चय के, हाँ, और वो गलत है। निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं, बस क्लियर। उसके लिए कुछ आर्गुमेंट है तो पहले पहले करना चाहिए ना शुभ भाव, वो होता है। कौन सा शुभ भाव करना चाहते हैं? अरे स्वाध्याय और तत्व निर्णय से उठकर उससे बढ़कर कोई अन्य शुभ भाव नहीं है। शुभ भाव करना चाहता है ना, कुछ शरीर की क्रिया करना चाहता है, वो शुभ भाव नहीं है। शरीर की क्रिया करने से वहाँ शुभ भाव होगा ये कोई गारंटी नहीं है। आठ आठ उपवास करने वाले और यहाँ संकलेश परिणाम में मरे जा रहे हैं, अरे प्यास से प्यास, अरे बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, वो क्या करे अभी, क्या करे अभी, क्या करे, जो पाप बांध रहा है। हाँ वो शुभ भाव ही है, तो शुभ भाव का निषेध कर रहे हैं, वो शुभ भाव हो रहा है ना? नहीं समझे?
देखो शुभ भाव ही है, शुभ भाव छोड़ने योग्य ऐसा
कह रहा है
के लिए बताया जा रहा है। ये जो भाव कर रहे हैं शुभ भाव ही है, आप भी कर रहे हैं और बताने वाला भी कर रहा है, मान लो तो वो कौन सा भाव है? शुद्ध भाव होगा क्या?
शुभ भाव।
हाँ।
तो देखो जिसको हम छोड़ना कह रहे हैं वही शुभ परिणाम,
वो इससे शुभ परिणाम है।
लेकिन वो तत्व का निर्णय करके ही हम आगे बढ़ेंगे,
बढ़ने का
उसका ये रखना तो चाहिए ना?
क्या
अभी भी चाहिए वाली बात? वो होता है, वो होता है, उसी में निर्णय कर रहे हैं कि ये रखने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। हाँ
बात खत्म करे इसके पहले मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर, अभी जो बात आपने चलाई अभी शुभ भाव की बात की है, तो दो दिन पहले हमने जो आश्रय भावना वहाँ ली थी और दिनेश भाई ने जो बात की थी कि उस शुभ भाव से अघाती कर्म में जो पुण्य बांधता है उसके उससे हिसाब से उस चार कर्म अघाती में आपको वो सहयोग की प्राप्ति होती है, और ऊपर के जो चार घातीय कर्म है वहाँ तो पाप भाव ही होता है। पाप
नहीं, वो इससे पाप है,
बंद हो
वो
पाप का बंद होगा,
ये नहीं वो पाप ही है,
पाप ही
वो
है।
कर्म ही पाप, कर्म में ही दो भेद है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। हाँ। उसकी ये बात है, अब यहाँ उसकी बात नहीं चल रही, यहाँ तो मान्यता की बात चल रही,
नहीं तो
मान्यता में पुण्य और पाप। हाँ
नहीं, 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 मैं वो बात अभी आगे बढ़ा, मेरा आगे बढ़ा के मेरा प्रश्न ये है, अभी आपने जो बात की, हमने जब 123 पेज लिया था तब आपने जब स्टार्ट की जिना गमनो अभ्यास का वो अगली बात है, और वही बात अभी आपने यही जो कही कि हमारा काम तो एक ही है, स्वाध्याय और तत्व निर्णय करना, तो उसी से अपना ज्ञान और कर्म और ऐसे ऐसे उसका उधार होके हमें तत्व निर्णय होता रहता है। यदि वो पाप कर्म है वहाँ पाप बन जाता है, तो पीछे ज्ञान कर्म कैसे कम होता है,
मंद होता है,
उसका अनुभव मंद होता है, क्योंकि हमने देखा था बंद होता है तो प्रकृति बंदी ज्ञानावरण की, उसके परमाणु आए परंतु उसका फल किस रूप में मिलता है, तो उसके अनुभव यानी रस कितना बंदा, जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो अभी तो मंद रस बन रहा है, और पूर्व में जो तीव्र बंदा था वो हल्का हो रहा है, अपने आप उसमें वो चेंजेस हो जाते हैं, तो हमें वो कर्मों में क्या होता है उसकी चिंता ही नहीं करनी, वो तो अलग साइंस है पूरा ही, कर्मों में सब फेवरेबल बातें होती है परंतु वो साइंस अलग है, हमें यहाँ क्या समझना है कि हम जो स्वाध्याय करते हैं नत्व निर्णय करते हैं, तो जो शुभ भाव तो करना चाहिए ना, इस पर जिनका जोर है उनके लिए कहते हैं, शुभ भाव के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं बहुत से, ये सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है कौन सा, स्वाध्याय करके अपने स्वरूप का चिंतन करना, चिंतन में है अभी तक, वो सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है, इन्हें हजारों करोड़ों तो उपवास करे फिर उससे भी ये बढ़कर है, स्वाध्याय के आगे वाला ध्यान ही है जो स्वरूप में मग्नता है, स्वरूप में मग्नता होने के पूर्व वाला शुभ भाव कौन सा है, तत्व का चिंतन, तो वो तो कर ही रहा है ना जी, परंतु मान क्या रहे, जब तक चिंतन है तब भी शुभ भाव है और वो छोड़ने लायक है, वो छूटकर वो स्वभाव का आश्रय करेगा तब उसका शुद्ध पर्याय रूप कार्य प्रकट होगा। अब यही रुकेंगे हम, बोलो चौबीसो भगवान की।